ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सरकार के नीति तथा कार्यक्रम को सत्तारूढ़ कांग्रेस और एमाले के संसदीय दलों ने बताया स्थिरता, विकास और सुशासन के लिहाज से सही। सकारात्मक सुझावों के साथ नीति तथा कार्यक्रम की बहस में शरीक होने का कांग्रेस ने अपने सांसदों को किया निर्देश। बीते अप्रैल महीने में अब तक के सबसे अधिक पर्यटक आए नेपाल। दो सालों से रुका हुआ कोहलपुर सुर्खेत 132 केवी विद्युत प्रसारण लाइन का काम फिर से हुआ शुरू और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पद पर एंथनी अल्बानीज पुनः हुए निर्वाचित। अब समाचार विस्तार से। नेकपा एमाले के संसदीय दल की बैठक ने सरकार के नीति तथा कार्यक्रम को लेकर निष्कर्ष निकाला है कि इसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। आज प्रधानमंत्री निवास बालवाचार में हुई बैठक ने ऐसा निष्कर्ष निकाला। बैठक में प्रधानमंत्री एवं एमाले संसदीय दल के नेता केपी शर्मा ओली ने कहा कि सरकार के नीति तथा कार्यक्रम देश में राजनीतिक स्थायित्व, विकास और सुशासन के लिहाज से सही है। उन्होंने दल के सांसदों को नीति तथा कार्यक्रम का निश्चिंत होकर और दृढ़ता के साथ समर्थन करने का निर्देश किया। नेपाली कांग्रेस ने सरकार के नीति तथा कार्यक्रम का रचनात्मक और सकारात्मक सुधार के साथ समर्थन करने का निर्णय किया है। कांग्रेस संसदीय दल की आज की बैठक ने कहा कि नीति तथा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए इसी के मुताबिक बजट भी आना चाहिए। ये बात कांग्रेस के प्रमुख सचेतक श्याम घिबिरे ने बताई। उनके मुताबिक बैठक का यह निष्कर्ष भी था कि संसद में विधेयक निर्माण में तीव्रता न होने के मौजूदा हालात से उबारने के लिए पर पार्टी को काम करना चाहिए। साथ ही शिक्षक महासंघ के साथ हुई सहमति के मुताबिक आषाढ़ 15 गते के अंदर निकास देने के हिसाब से विधेयक पारित करने को लेकर सभी सांसदों के प्रतिबद्ध होने को भी बैठक ने जरूरी बताया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्वतंत्र एवं बहुलवादी प्रेस के लिए घोषणा पत्र जारी होने के दिन की याद में मई 3 तारीख को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर आज नेपाल पत्रकार महासंघ द्वारा आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तप बहादुर मगर ने कहा कि प्रेस स्वतंत्रता मानव अधिकार का रक्षक है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की नीतिगत और व्यवसायिक सुरक्षा पर सबको ध्यान देना चाहिए। इस बात का जिक्र करते हुए कि पिछले वर्षों के मुकाबले इस साल प्रेस स्वतंत्रता हनन की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। अध्यक्ष मगर ने कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कार्यविधि अनिवार्य है। बता दें कि देश में पिछले एक साल में प्रेस स्वतंत्रता हनन की 73 घटनाएं हुई है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने कहा कि नेपाल पूर्वीय ज्ञान और परंपरा का स्रोत है। इसके भीतर अनेक संस्कृतियों और संभाव्यताओं के बीच एकता देखी जा सकती है। काठमांडू नागार्जुन नगरपालिका वार्ड नंबर 7 रामकोट स्थित बद्री नारायण धाम उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पौड़ेल ने ये बात कही। कर्णाली प्रदेश की समृद्धि से जुड़ी कोहलपुर सुर्खेत 132 केवी विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार परियोजना का काम पुनः शुरू हुआ है। पिछले 2 सालों से अवरुद्ध बांके के बनियाभार खंड में आज स्थानीय प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा का बंदोबस्त किए जाने के बाद परियोजना विस्तार का काम फिर से शुरू हुआ है। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह ने कहा कि आगामी आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक सामाजिक गतिविधि बढ़ाने के हिसाब से आए हैं। आज ललितपुर के मंगल बाजार में आयोजित कार्यक्रम में उप प्रधानमंत्री सिंह ने कहा कि संविधान क्रियान्वयन और नागरिकों को अपेक्षाओं को पूरा करने के हिसाब से नीति तथा कार्यक्रम आए हैं। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
नेपाल टेलिकम को 4G वीडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबै को यो विश्वास हो नी नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नोजी नेपाल टेलिकमको 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकमको 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड ने कहा कि लोकतंत्र के उपलब्धि को संस्थागत करते हुए आगे बढ़ना होगा। तामांग राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा नेपाल के प्रथम बागमती प्रदेश अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी निर्वाचन में पहली पार्टी बनने के संकल्प के साथ जनता के साथ के संबंध सुदृढ़ करते हुए झापा से कंचनपुर तक हुलाकी राजमार्ग लक्षित अभियान सम्पन्न हुआ है। इसी तरह अध्यक्ष प्रचंड ने दक्षिणकाली नगर समिति की चौथे सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि बदलते हुए विश्व के परिस्थिति को दृष्टिगत करके अंतर्राष्ट्रीय संतुलन के साथ सुशासन के पक्ष में नए क्रांति आवश्यक है। नेपाली कांग्रेस के नेता डॉ शेखर कोइराला ने कहा कि सरकार द्वारा लाई गई नीति तथा कार्यक्रम अच्छी है और अब क्रियान्वयन के प्रक्रिया में नहीं चुकना होगा। आज चितवन में पत्रकारों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि नीति तथा कार्यक्रम अच्छा लाया गया है और क्रियान्वयन के पक्ष कमजोर होने पर समस्या होता है, इसलिए क्रियान्वयन होने के हिसाब से बजट में लाना होगा। उन्होंने कांग्रेस के 15वां महाधिवेशन तय किए गए समय के भीतर करने पर जोर देते हुए कहा कि महाधिवेशन से पार्टी को एकताबद्ध बनाना होगा और गुट का अंत करने की जानकारी देते हुए ये भी कहा कि महाधिवेशन का समय बढ़ाने का कोई कारण नहीं है। दार्चुला जिला मुख्यालय खलंगा स्थित वीरेन्द्र वन के उस पार की नेपाली भूमि में भारत की ओर से तटबंध निर्माण किए जाने का स्थानीय वासिंदाओं और राजनीतिक दलों ने विरोध किया है। विक्रम संवत 2070 की बाढ़ आने के बाद भारत की ओर रही नेपाली जमीन पर भारत तटबंध बना रहा है। इसे अविलंब रोकने के लिए कूटनीतिक पहल करने की मांग करते हुए नेकपा एमाले जिला कमेटी ने प्रमुख जिला अधिकारी को ज्ञापन पत्र सौंपा है। बांके के कोहलपुर एक में 91 भूमिहीन दलित और सुकुम्बासियों को जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा यानी कि लाल पुर्जा वितरण किया गया है। लाल पुर्जा वितरण कार्यक्रम में भूमि शाकाहारी सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री बलराम अधिकारी ने कहा कि भूमिहीन दलित और सुकुम्बासियों को कानूनी प्रक्रिया पूरा करके जमीन वितरण करने का प्रक्रिया शुरू किया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ऑस्ट्रेलिया में हुए आम चुनाव में प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने जीत हासिल की है। सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के नेता 21 वर्षों में लगातार दूसरी बार 3 साल का कार्यकाल जीतने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री बन गए हैं। रूढ़िवादी लिबरल पार्टी के नेता पीटर डटन अपनी डिक्सन की सीट भी नहीं बचा सके। इस पर लेबर पार्टी की उम्मीदवार ने जीत हासिल की। उन्होंने हार स्वीकार करते हुए कहा कि हमने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए चरमपंथी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी DGFT ने पाकिस्तान के साथ सभी तरह के आयात पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। वहीं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने आदेश जारी कर कहा है कि पाकिस्तान के जहाजों को भारत के बंदरगाहों पर एंट्री नहीं दी जाएगी। पहलगाम हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के खिलाफ कई कदम उठाए हैं, जिसमें भारत की ओर से सिंधु जल संधि को निलंबित करना शामिल है। इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के लिए एयर एक्सप्रेस को भी बंद कर रखा है। DGFT ने 2 मई को नोटिफिकेशन जारी कर कहा पाकिस्तान से सभी तरह के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है। आज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने कहा कि मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 की धारा 411 का इस्तेमाल करते हुए ये आदेश जारी किया जा रहा है। पाकिस्तान का झंडा लगे जहाज को किसी भी भारतीय बंदरगाह पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारतीय झंडे वाला जहाज पाकिस्तान से किसी भी बंदरगाह पर नहीं जाएगा। बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी और अन्य कई घायल हुए थे। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार के नीति तथा कार्यक्रम को सत्तारूढ़ कांग्रेस और एमाले के संसदीय दलों ने बताया स्थिरता, विकास और सुशासन के लिहाज से सही। सकारात्मक सुझावों के साथ नीति तथा कार्यक्रम की बहस में शरीक होने का कांग्रेस ने अपने सांसदों को किया निर्देश। बीते अप्रैल महीने में अब तक के सबसे अधिक पर्यटक आए नेपाल। दो सालों से रुका हुआ कोहलपुर सुरखेत 132 केवी विद्युत प्रसारण लाइन का काम फिर से हुआ शुरू और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पद पर एंथनी अल्वानिज पुनः हुए निर्वाचित। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।